ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रथम महाधिवेशन आज से चितवन के भरतपुर में हुआ शुरू। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा, सरकार नियम और कानून के दायरे में रहकर ही काम करेगी। राष्ट्रवाद पर किसी को संदेह न करने का किया आग्रह। और अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष वार्ता आज स्विट्जरलैंड में शुरू होने की है तैयारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रथम महाधिवेशन आज चितवन के भरतपुर में विशेष समारोह के बीच शुरू हुआ। पार्टी सभापति रवि लामिछा ने और वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने घंटी बजाकर महाधिवेशन का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि रासपा नेतृत्व वाली सरकार अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं रुकेगी। उन्होंने वर्तमान कार्यकाल के भीतर सुकुम्बासी और सहकारी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के साथ सीमा विवाद पर हाल ही में दिए गए अपने बयान को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि कालापानी और लिपुलेक नेपाल के अभिन्न भूभाग हैं और इसके पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासनकाल के अभिलेखों की बात प्रमाण के संदर्भ में कही गई थी, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए नहीं। उन्होंने नागरिकों से अपनी राष्ट्रभक्ति पर संदेह न करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री शाह ने रासपा को पूर्ण रूप से विकासवादी पार्टी बताते हुए कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी सुशासन और विकास के एजेंडे के साथ जनता के बीच जाएगी। भ्रष्टाचार नियंत्रण के विषय में उन्होंने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग को पूर्ण स्वतंत्रता दिए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। महाधिवेशन को संबोधित करते हुए रासपा सभापति रवि लामिछाने ने देश के तीव्र विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए राजनीतिक दलों के बीच सहकार्य आवश्यक होने की बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत और दलगत वैमनस्य छोड़कर देश निर्माण में एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ पूर्ण समझदारी और समन्वय कायम रहने का विश्वास भी जताया। महाधिवेशन में नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा कि नेपाली कांग्रेस रासपा की दुश्मन नहीं है। उन्होंने राजनीतिक दलों को आंतरिक विवाद, व्यक्तिवाद और नेतृत्व संघर्ष से बचने की सलाह देते हुए कहा कि जनमत प्राप्त करने के बाद भी दल इन्हीं कारणों से कमजोर होते हैं। थापा ने रासपा के कार्यकर्ताओं से नेतृत्व का अंध समर्थन न करने और आवश्यक होने पर आलोचनात्मक चित बनाए रखने का आग्रह भी किया। महाधिवेशन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भी शुभकामना संदेश भेजे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रथम महाधिवेशन की निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक कर दी गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधियों की प्रारंभिक नामावली शनिवार रात ही प्रकाशित कर दी गई थी। निर्वाचन आयोग के प्रमुख भुवन केसी के द्वारा के अनुसार आज रात 11 बजे प्रतिनिधियों की अंतिम नामावली प्रकाशित की जाएगी। कल सोमवार दोपहर 1 बजे से उम्मीदवारों के लिए नामांकन फॉर्म वितरण शुरू होगा, जबकि दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची सोमवार शाम 6 बजे प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सोमवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक उम्मीदवारों के विरुद्ध दावा आपत्ति दर्ज करने का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम समय सीमा रात 9:15 तक तय की गई है, जबकि अंतिम उम्मीदवार सूची रात 11 बजे प्रकाशित होगी। आयोग के अनुसार आगामी आषाढ़ नवगते मंगलवार को सुबह 8:30 से दोपहर 3 बजे तक प्रथम चरण का मतदान होगा। इस दौरान एक सभापति और 99 केंद्रीय सदस्यों के चयन के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान संपन्न होने के लगभग 2 घंटे बाद मतगणना और परिणाम घोषणा की जाएगी, जिसके बाद आवश्यक होने पर दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। निर्वाचन आयोग ने सभापति पद के उम्मीदवार के लिए 51,000 रूपये शुल्क, एक प्रस्तावक और 51 समर्थकों की अनिवार्यता तय की है। इसी प्रकार पदाधिकारी पद के लिए 41,000 रूपये शुल्क, एक प्रस्तावक और 21 समर्थकों तथा केंद्रीय सदस्य पद के लिए 21,000 रूपये शुल्क, एक प्रस्तावक और 21 समर्थकों का समर्थन आवश्यक होगा। रासपा के प्रथम महाधिवेशन में कुल 4,211 प्रतिनिधि सहभागी हैं। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग नारों के साथ आज नेपाल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। काठमांडू के दशरथ रंगशाला में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास और प्रवचन का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव सुमन राज अर्याल ने बताया कि सरकार विद्यालय स्तर से ही योग, ध्यान और आरोग्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। पोखरा महानगर पालिका ने पृथ्वी चौक स्थित प्रस्तावित बस पार्क के क्षेत्र में बने बास्तोला कॉम्प्लेक्स के 320 से अधिक शटर और अन्य संरचनाएं हटाई हैं। महानगर पालिका के अनुसार ये कार्रवाई आपसी सहमति के आधार पर की गई। महानगर प्रमुख धनराज आचार्य ने बताया कि व्यवसायियों के साथ लगातार संवाद के बाद संरचनाएं खाली कराई गईं। वहीं सुखुम्बासी बस्ती के 572 परिवारों में से अब तक 337 परिवारों का दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका है। काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय की टीम ने वैदेशिक रोजगार के नाम पर लाखों रूपये ठगी करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, ब्रिटेन, यूएई और अजरबैजान भेजने का झांसा देकर विभिन्न व्यक्तियों से बड़ी रकम वसूल की थी। रकम लेने के बाद संपर्क विहीन होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचल भेज दिया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल पहुंच गए हैं। इसके अलावा मध्यस्थ देश पाकिस्तान और कतर के नेता भी स्विट्जरलैंड में हैं। ये बात स्विट्जरलैंड के पर्यटक स्थल बर्गेनस्टॉक में होनी है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में बड़े चेहरे के रूप में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल हैं। उनके अलावा अमेरिका के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। वहीं ईरानी प्रतिनिधिमंडल में संसद के स्पीकर बगर गलिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची शामिल हैं। ये नेता इससे पहले भी इस्लामाबाद में हुई बातचीत में अपने देश की अगुवाई कर चुके हैं। बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज सुबह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। बीबीसी के मुताबिक ईरानी वार्ता दल के प्रमुख मोहम्मद बगर गालिबाफ ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और ईरानी विदेश मंत्री ने स्विस विदेश मंत्री के साथ बैठक की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि इस वार्ता में ईरान, अमेरिका, कतर और पाकिस्तान यानी चारों देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। गजा में इसराइली हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है, जिनमें अल जजीरा के एक कैमरामैन और कम से कम एक बच्चा शामिल है। ये जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों और बचाव कर्मियों ने दी है। अल जजीरा ने कहा कि वो अपने संवाददाता अहमद विशाह की हत्या के जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करता है। अहमद विशाह शनिवार को मध्य गजा के एक घर पर हुए हमले में मारे गए। अल जजीरा ने यह भी कहा कि अहमद विशाह की मौत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है और ये पत्रकारों को निशाना बनाने और सच की आवाज को दबाने की लगातार जारी एक व्यवस्थित नीति को दर्शाता है। वहीं इसराइल डिफेंस फोर्स IDF ने आरोप लगाते हुए अहमद विशाह को हमास की सैन्य शाखा से जुड़ा आतंकी बताया और कहा कि वो स्नाइपर ऑपरेटिव के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि इसराइली सेना ने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किया। गजा के हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले अक्टूबर में इसराइल और हमास के बीच लागू हुए युद्ध विराम के बाद से इसराइली सेना की कार्रवाई में 1,007 लोगों की मौत हो चुकी है। गजा के हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को संयुक्त राष्ट्र भरोसेमंद मानता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रथम महाधिवेशन आज से चितवन के भरतपुर में हुआ शुरू। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा, सरकार नियम और कानून के दायरे में रहकर ही काम करेगी। राष्ट्रवाद पर किसी को संदेह न करने का किया आग्रह। और अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष वार्ता आज स्विट्जरलैंड में शुरू होने की ही तैयारी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।